الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس خطبے اور دعاؤں کے ساتھ ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں، جو کہ انتظام خانہ یعنی ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ پر مشتمل ہے، جو کہ ہمارے حضرت کے سیریز آف لیکچرز امور خانہ داری میں حسن انتظام میں سے ایک بیان تھا. تو انتظام خانہ میں ہم جو ہے وہ گھر کی ارینجمنٹ آرگنائز کرنا، وہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم سب سے پہلے جو ٹاپک پڑھا، جو سب سے پہلا سب ٹائٹل پڑھا تھا، فالتو چیزوں کو گھر سے نکالنا، فارغ کرنا، کلٹر کو، سوری کلٹر کو جو ہے وہ گھر سے ختم کرنا، اور اس کے بعد سٹور کو سیٹ کرنا. یہ ہم نے پڑھا تھا. سٹور جو ہوتا ہے ایک ذرا سا باہر کی جگہ ہوتی ہے، مین رہنے کی جگہ کو سٹور نہیں کہتے. سٹوریج جو ہوتا ہے وہ باہر کے سائڈ پہ سیٹ کرنا نا. تو اس کے بعد پھر کتابوں کو سیٹ کرنے کے بارے میں بات کری تھی. پھر کچن کو ترتیب دینا، جہاں پہ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ تیار ہوتی ہیں. کچن کے اندر کچن کے درازوں کو سیٹ کرنا، یہ الگ سے پڑھا تھا. اور کچن کے جو آلات یعنی اپلائنسز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو بھی الگ سے ہیڈنگ دے کر کے کتاب میں مینشن کیا گیا ہے. کچن کے بعد پھر کمروں کی چیزوں کو سیٹ کرنا، اور کمرے کے اندر ظاہر ہے کہ جو الماریاں ہوتی ہیں، کپبورڈز بھی جن کو کہتے ہیں یا کلوزٹس جن کو کہتے ہیں، ان کے اندر کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے ترتیب دینا ہے. پھر اس کے بعد جوتوں کی ترتیب بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اور اس کے بعد پھر لانڈری کا انتظام. لانڈری جو ہوتی ہے وہ اس کی نوبت کب آتی ہے کہ جب ہم کپڑوں کو پہن چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہم میلے ہونے کے اوپر اتار دیتے ہیں، تب لانڈری کی نوبت آتی ہے. بہرحال جو بھی ترتیب اس کو آپ سمجھنا چاہیں جیسے بھی. تو لانڈری کا جو انتظام ہم نے اس کے بعد پڑھا تھا. اور اس کے بعد آج جو ہے وہ پیج نمبر 192 کے اوپر اسٹڈی ٹیبل کی ترتیب، یعنی جس میز کے اوپر بچے پڑھتے ہیں یا بڑے پڑھتے ہیں. کبھی بڑوں کے لیے بھی اسٹڈی ٹیبلز ہوتی ہیں گھر کے اندر، ہونی چاہیے. کیا گھر کے جو بڑے مرد ہوتے ہیں دفتر میں، ان کے پاس بے شک ٹیبل ہوتی ہوگی. اگر وہ وائٹ کالر ورکر ہے دفتر میں، ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرنے والے یا مطلب کرسی پہ بیٹھ کے ٹیبل پہ کام کرنے والے، لیکن گھر میں بھی اسٹڈی ٹیبل ہوتی ہے مطالعہ کرنے والوں کے لیے یا دفتر کا کام کرنے والوں کے لیے. تو اس کی کیسی ترتیب ہونی چاہیے، یا بچوں کی، کیونکہ بچوں کی جب پڑھائی لکھائی وغیرہ کام ہوتا ہے تو ان کو بھی ٹیبل کی ضرورت پڑتی ہے. زمین پہ بیٹھ کر کے کام کرنا وہ ایک الگ ترتیب ہے. اگر اس سے زیادہ مناسبت ہو تو پھر وہ زمین کا ہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. زمین کی بے شک ایک چھوٹی سی ٹیبل زمین پہ بھی رکھی جا سکتی ہے کہ بیٹھیں تو زمین پر لیکن سامنے ایک چھوٹے سائز کی ٹیبل کو، لیکن یہاں پر اس کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر جو ہے بڑے سائز کی اونچی ٹیبل کی بات ہو رہی. تو اس میں فرماتے ہیں کہ اب گھر میں پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ جیسے بچوں کی کمروں میں یا خاوند کے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل ہوتی ہے، تو اسٹڈی ایریا کو ہمیشہ سمپلیفائی رکھنا چاہیے، سادہ رکھنا چاہیے پڑھائی کے ایریا کو، سادہ. یعنی وہی وہاں پر بھی کلٹرنگ نہیں ہونی چاہیے. اسٹڈی ٹیبل کے اوپر جو ہے کچرا جمع نہیں ہو جانا چاہیے، اور چیزوں کا انآرگنائز طریقے سے وہاں پر نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں پہلے ذکر کرتے ہیں میل کا، یعنی جو ڈاک آتی ہے बाहर से। अब ये डाक के आने का सिलसिला आज के दौर में बहुत कम हो गया क्योंकि हर चीज ऑनलाइन आ जाती है, लेकिन अभी भी कुछ मौजूद है, जैसे बिल्स आते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान में अभी भी जो है वो, इंडिया में भी आते होंगे, कागजी बिल्स जो है वो डाक के जरिए से आते हैं, फिर जो है वो आपको अंदर लेकर के आने होते हैं, बाहर पोस्ट बॉक्स से निकाल करके। तो उसकी बात कर रहे हैं कि पोस्टमैन जो मेल यानी डाक रोजाना लेकर आता है उसको रोज चेक कर लेना चाहिए, खुसूसन सेल्स पेपर जो है, तो इवन अमेरिका वगैरह के अंदर भी खूब सारे जो है वो एक अच्छा खासा हद्दा जो है वो सेल्स पेपर वगैरह का आता है, ब्रोशोर्स और पैम्फलेट्स और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर अला बला होती है, काम की चीजें एक आधी होती हैं, वरना तो ज्यादातर इसी तरह की चीज होती है। तो वो सब आप अंदर लेकर के आई तो उनको जो है वो चेक कर लें कि क्या काम की चीज है, तो जो रद्दी मेल डाक है उसको फौरन निकाल देना चाहिए, उसको जो है ना फौरन फेंक देना चाहिए, डस्टबिन में फेंकें या उसको किसी और ऐसी जगह पर फेंकें जहाँ पे उसको रिसाइकिल किया जा सकता हो, क्योंकि पेपर जो है वो रिसाइकिल भी किया जा सकता है। अगर इस किस्म का इंतजाम मौजूद है कि रिसाइकलिंग बिन आपने अलग से रखा हुआ है तो उसके अंदर उसको डाल दें, तो जो रद्दी यानी बेकार की मेल होती है ना, तो उसको तो फौरन निकाल देना चाहिए। खाविन की कोई मेल यानी डाक है तो वो उसके डेस्क के ऊपर रोजाना रख देनी चाहिए ताकि जब वो आए तो उसको अपनी मेल यानी डाक अपने डेस्क पर मिले। तो अब ये बड़ा एक खादिमाना किस्म का एक रोल मिलता लगता है कि भाई ये क्या हम उसके लिए जो है वो सारा काम करते रहे, तो जाहिर है इस तरह का अगर मिजाज होगा कि हाँ भाई घर में हूँ तो मैं घर में जो अफराद दीगर रहते हैं उनकी खिदमत करना जो है मेरे लिए इज्जत का बायस है, खिदमत से जो है वो अजमत मिलती है, खिदमत से अल्लाह ताला राजी होते हैं, तो इस नियत से जो है वो मैं खिदमत कर रही हूँ, तो फिर ये चीज़ मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर इस किस्म का मिजाज बना हुआ है पहले से कि नहीं मैं क्यों किसी की खिदमत करूँ, मैं खाविन की खिदमत क्यों करूँ, तो फिर जाहिर है ये चीज़ तो फिर बहुत ही डिरोगेटरी लगेगी ना, कि भाई मैं क्यों रखूं उनकी डाक उनके मेल उनके मेज के ऊपर, खुद रखें अपना, ये सारा काम खुद करें अपना, ठीक है। तो मिजाज मिजाज का फर्क होता है, अल्लाह ताला तौफीक हमें अता फरमाए कि हम दूसरों की खिदमत का मिजाज बनाए, शौहर को भी खिदमत का मिजाज अल्लाह ताला अता फरमाए, तो वो भी बीवी के कोई ऐसा काम करने में आर महसूस नहीं करेगा और बीवी को भी जो है वो खिदमत का मौका अता फरमाए, मिजाज अता फरमाए। अलबत्ता ये जरूर है कि खिदमत के जो दायरे होते हैं ना वो अल्लाह ताला ने अलग अलग बना दिए हैं, तो शौहर जो बाहर जा करके कमा के लेकर के आ रहा होता है, ट्रैफिक के अंदर अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है या किसी दूसरे की गाड़ी में बैठ करके जा रहा होता है और फिर वहां पे जो भी अंदर बाहर के काम कर रहा होता है, दफ्तर के अंदर के दफ्तर काम के, तो वो सब भी तो खिदमत ही होती है, वो सब भी तो खिदमत ही होती है। तो वो अगर कहे कि मैं क्यों करूं, ठीक है, मैं कमाऊं सिर्फ अपने लिए कमाऊं, मैं अपनी जात के लिए कमाऊं, अपने सारे मसले अपने पैसे जो मैं कमा रहा हूं मैं उससे अपने मसले जो है वो पूरे करूं, अपनी जरूरियात जो है वो खरीद के लेकर के आऊं, तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर बीवी और बच्चे जो है वो क्या करेंगे, ठीक है, कभी अब्बू जो है ना वो तो अपने लिए कमाई करते हैं, हमारे लिए तो कमाई नहीं करते, तो फिर बच्चों को जाकर के खुद ही कमाई करनी पड़ेगी, जैसे बहुत सारे और बड़ी तादाद में ऐसे लोग जो है वो इंडिया पाकिस्तान वगैरह और इवन सऊदी अरब के अंदर भी जो गरीब तबका है वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जहाँ बच्चों को जाके खुद कमाई करनी पड़ती है, ठीक है ना, बाप जो है वो नहीं कमाई करके लाता उनके लिए, ठीक है, या तो वो जो भी काम कर रहा होता है चाहे वो घर छोड़ करके ही चला गया होता है, ठीक है, या कहते अभी मैं अपना नशा करूंगा। कितने ऐसे हमारे यहाँ मासियां आती थी, तो मैं एक बेगम साहब बताती हैं कि वो मासी आकर के बताती थी कि मुझे खुद ही जो है वो अपने लिए कमाई करनी होती है, बच्चों के लिए कमाई करनी होती है, क्योंकि शौहर जो है वो तो बस नशा करता रहता है, वो तो हेरोइन पीता रहता है और वो तो पड़ा रहता है घर के अंदर ही रहता है, वो तो बाहर जा करके काम नहीं करता है, ठीक है। तो अब मुझे खुद ही कमाना पड़ता है, दूसरों के घरों में जाना पड़ता है, उनकी जो है वो खिदमत करनी पड़ती है, उनके घरों की सफाई करनी पड़ती है उनका। तो अब हमें अगर ये सब कुछ नहीं करना पड़ता तो हम में कौन से ऐसे चार चांद लगे हुए हैं? हम समझते हैं ना कि हम में चार चांद लगे हुए हैं, इस वजह से हमें घर बैठ करके जो है वो हमारा हक है कि शोहर कमा के लेकर के आए और जो है वो हम बहुत ही इज्जत और इकराम के साथ घर के अंदर रहें। नहीं, हमारा कोई हक तो नहीं है। यानी हम ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने हक तो बताया है, लेकिन अगर कोई आपका ये हक अदा ना करे तो आप क्या कर लेंगे? राइट, क्या कर लेंगे? शोर मचाएंगी, घर छोड़ के चली जाएंगी। भाई अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया है तब आप ये काम कर सकती हैं ना कि घर छोड़ के चले जाएंगे। अगर आप भी मासी की जगह पर होते, आप भी जो है वो उसी तरह उस क्लास के अंदर रहने वाले बच्चों की तरह होती, तो उस वक्त आप क्या करते? उस वक्त तो आपको जो है वो यानी तौअन व करहन है, चाहे ना चाहे आपको निकल करके जो है वो मुशक्कत और मजदूरी करनी पड़ती है ना। बच्चों को भी साथ लेकर के निकलना पड़ता है, बच्चे भी साथ साथ जो है मेहनत मुशक्कत कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी इवन सऊदी अरब में भी जो लोग रहते हैं वो भी देखे ना, आप गाड़ी ड्राइव करके कहीं जा रहे होते हैं तो सड़क के किनारे जो है वो एक खातून बैठी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर अभी भी उस हद तक कम से कम कुछ बुरका वुरका है, वो तो पूरे बुरके में, चाहे मैंने देखा है 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी ज्यादा गर्मी होती है ना, और बिल्कुल दोपहर का वक्त होता है, हत्ता कि जुमे का टाइम क्या होता है, 12 बजे जुमे का टाइम शुरू होता है ना, उस टाइम पर औरत जो है वो काला बुरका पहने हुए बिल्कुल धूप के नीचे बगैर कोई छतरी वतरी कुछ नहीं होती उसके ऊपर, वो बैठी होती है सड़क के किनारे और उसने छोटा सा जो है ना अपना कोई स्टॉल सा लगाया हुआ होता है अपने सामने, छोटी सी एक टेबल रखी हुई होती है उसके ऊपर, पता नहीं क्या बेच रही होती है, कहवा बेच रही होती है उस गर्मी के वक्त में, या क्या कर रही होती है। ऐसे वक्त में भी देखा है औरत बैठी हुई है, कभी जो है वो अक्सर के कभी नहीं, अक्सर जो है वो औरत के साथ उसकी बच्ची होती है, छोटी सी बच्ची होगी या छोटा बच्चा होगा उसके साथ, वो उसको पता नहीं इसकी कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है कि कहीं कोई मर्द आकर के उसको और ना समझना शुरू हो जाए, तो अपने बच्चे को भी साथ रखती है। भाई हमने कौन सा ऐसा तीर मारा है कि हम उसकी जगह नहीं हो सकते थे? वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हमारे ऊपर एहसान हो गया ना, अल्लाह ताला का करम हो गया कि हमें ये नहीं करना पड़ता, वरना हमें उनकी जगह पे बना देते तो कोई कंप्लेन कर सकते थे आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जा करके, अपना दरख्वास्त दायर करते कि नहीं मुझे घरों के अंदर होना चाहिए था, मैं घर के बाहर क्यों बैठी हुई हूँ, मुझे तो घर के अंदर होना चाहिए था। कोई कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसी है अदालत जो कि आपकी इस दरख्वास्त को सुनती और उसके ऊपर जो है फिर वो गौर करती और फिर आपको जो है वो घर अता कर देती? ऐसी तो कोई अदालत नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से बात कहाँ से शुरू हुई थी कि अल्लाह ताला ने घर की चार दीवारी के अंदर रहते हुए, घर की छत के नीचे रहते हुए जो खिदमत का मौका अता फरमाया ना, इसको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके करने की, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके कि अल्लाह ताला ने सब कुछ मुझे अता फरमाया है, और फिर जो खिदमत का मौका मिला है तो वो खिदमत करना चाहिए। जिस तरह शौहर जो है वो बाहर जा करके खिदमत करता है, उसी तरह बीवी को जो है वो अंदर रह करके खिदमत करनी चाहिए। ठीक है, फर्ज वाजिब के चक्कर में पड़ेंगी, मेरे ऊपर ये वाजिब नहीं था, मेरे ऊपर ये फर्ज नहीं था, मेरे दिस इज नॉट माई माई टास्क, राइट, दिस इज नॉट माई पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर जो है वो बस फसाद होगा, और यानी दुनियावी एतबार से फसाद होगा और अल्लाह की नेमत की नाकदरी होगी, अल्लाह की नेमत की नाकदरी होगी। जब अल्लाह की नेमत की नाकदरी होती है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना खुश नहीं होते, फिर उसके बाद कोई और फैसला कर, अच्छा ठीक है तुम्हें ये नेमत नहीं चाहिए ना, तो ठीक है हम तुम्हें तुमसे ये नेमत वापस ले लेते हैं, हम तुमसे ये नेमत वापस ले लेते हैं, फिर जाओ जाकर के दूसरे लोगों की तरह से खिदमतें करो सारी दुनिया की। ठीक है, तो ये जो एक जुमला है ना कि खावन की कोई मेल तो वो उसके डेस्क के ऊपर रोजाना रख देनी चाहिए ताकि जब वो आए तो उसको अपनी मेल अपने डेस्क पर मिले, ये शयातीन जो हैं उन्होंने इसको बड़ा ड्रोगेटरी बनाया हुआ है, तो बड़ी पस्त किस्म की चीज है, तुम क्यों खिदमत करो? ठीक है, आज के दौर में चूंकि ये चीज बहुत ज्यादा प्रमोट की जा रही है मीडिया के ऊपर भी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी, तो इसको हम हमें इस तरीके से व्यू करने की जरूरत है, और दूसरों को भी समझाने की जरूरत है भाई, जो आप हमारे अपने खानदान के लोग हैं वो उस वाले प्रोपेगेंडा की नजर हुए हैं, उनको समझाने की जरूरत है। अगर आपको अपने बच्चों के बारे में स्कूल की तरफ से कोई मेल मिले तो उसकी अलग फाइल और फोल्डर में रखें, ठीक है, कुछ फाइल फोल्डर्स वगैरह का निजाम होना चाहिए। बाजार में भी आजकल बड़ी आसानी से मिल जाती है, येलो कलर की भी होती है, डिफरेंट मल्टी कलर्स होती हैं, यहाँ पे 2 रियाल शॉप कहलाती हैं या 5 रियाल शॉप कहलाती हैं, या और इस तरह की स्टेशनरी की दुकानें मिलती हैं पाकिस्तान इंडिया के अंदर, तो वहां से ये फाइल्स और फोल्डर्स मिल जाते हैं, तो उनके अंदर ऑर्गेनाइज कर दें इन चीजों को। ये बहुत अहम फोल्डर होता है क्योंकि बच्चों की जो मेल्स मेल होती हैं, यानी जो डाक या जो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उस पर वालिदैन को एक्शन लेना पड़ता है, इसलिए उसकी बहुत एहतियात
क्या
करनी
हुआ?
चाहिए। कर दें, वो स्टाफ ने बना दिया। अच्छा, अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना हो जो कि वो चाहती हो कि सारी क्लास ना देखे कि उन्होंने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो वो इस आरजिस को जो है ना वो डायरेक्टली मैसेज कर सकती हैं क्लिक करके खाली नाम के ऊपर, और या एक्चुअली नाम मैंने रीनेम नहीं किया, अनारा सेंटर ऑनलाइन एडमिन के नाम से टीचर का नाम डाल देते, तो ये जो टीचर के नाम, तो आप जो है वो कोई ऐसे मैसेज कर सकती हैं, क्लास के अंदर कोई सवाल पूछना हो या किसी हमारे सवाल का जवाब देना हो तो उसमें भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकती हैं। आपस में स्टूडेंट्स की डायरेक्ट मैसेजिंग जो है वो हमने बंद करी हुई है, ठीक है, लेकिन होस्ट और को होस्ट को कोई भी स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं क्लास के अंदर। अच्छा, तो ये बहुत अहम फोल्डर होता है। अब ऑनलाइन सिस्टम के अंदर, जैसे ऑनलाइन कुछ लोगों ने अपने बच्चों को किसी ऑनलाइन एकेडमी के अंदर एडमिशन करवाया हुआ होता है, तो या इवन जो फिजिकल स्कूल्स भी होते हैं तो वो भी आजकल काफी कम्युनिकेशन जो है वो ईमेल के ऊपर या व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर करते हैं, ठीक है, तो उन कम्युनिकेशंस को भी जो है ना वो इसी तरीके से किसी फोल्डर में बना करके अपने लैपटॉप पे सेव कर लेना चाहिए, या अपने फोन के अंदर भी इस तरह से कोई ग्रुपिंग वगैरह कर लेनी चाहिए ताकि वो अलग रहें, वो गुम ना हो जाए व्हाट्सएप के मैसेजेस के अंदर, वो दब ना जाए, उनका एक अलग इस तरीके से कोई आइडेंटिफिकेशन बना लेनी चाहिए, ठीक है जी। आपको जो सवाल करना है वो आप लिख दीजिए, वालेकुम असलाम तुम्हारा, और उसके बाद हम उसको एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हर काम की मुख्तलिफ फाइलें बनाएं, इन फाइलों को आप रीड करें और उनको आप रिकॉर्ड में रखें और उनको रिप्लाई करें। हर औरत को घर के अंदर जैसे इंश्योरेंस की फाइल बनानी चाहिए, टैक्स की फाइल बनानी चाहिए, ठीक है, तो ये फाइलिंग वगैरह भी जो है वो औरत घर के अंदर, क्योंकि तो उसका ज्यादा वक्त गुजरता है, तो उसको जो है वो इवन इस तरह की जो कि बाहर पूरे पूरे मर्दों के काम होते हैं, टैक्स फाइलिंग करना, ठीक है, तो टैक्स की एक फाइल अलग से मेंटेन कर लें। इंश्योरेंस से मुराद यहाँ पर यह है कि जो गाड़ी की इंश्योरेंस होती है या हेल्थ इंश्योरेंस होती है, जो कि कुछ मुल्कों के अंदर जो है वो लाजमी लेनी, उसके बगैर जो है ना वो हुकूमत की तरफ से ये पाबंदी होती है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदनी है, आपने गाड़ी की इंश्योरेंस खरीदनी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक शायद इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि हर एक ने लेनी है, उसके दूसरे इंतजाम होते हैं हेल्थ कवरेज के लिए, और तो इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये, यानी दीनी एतबार से भी देखा जाए तो ये जायज कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जहां पर इसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है तो वहां पे उलमा ने फतवा दिया है कि आप इंश्योरेंस जो है वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी तफसील है कि किस तरह की इंश्योरेंस ले सकते हैं, किस तरह की इंश्योरेंस आप नहीं ले सकते हैं। जैसे सऊदी अरब के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, हर बंदे ने जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, ठीक है, उसी तरह गाड़ी की इंश्योरेंस, इसके बगैर गुजारा नहीं है, अगर आप गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो फिर जो है ना वो आपको बाकायदा फाइन होगा गाड़ी का, तो उसी तरह से तो अगर ये है आपके पास तो फिर इनकी फाइल वगैरह बनानी चाहिए। फिर होम इंश्योरेंस भी ठीक है, तो वह कल बात जो है वो आखिर में इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा, तो होम इंश्योरेंस भी अगर है, उसकी भी आप अलग से फाइल बना रहे हैं। कार इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, कार रिपेयरिंग की फाइल बनानी चाहिए कि किस कार का कितने अरसे के बाद तेल बदलवाना है या कुछ और रिपेयरिंग करनी। ठीक है, तो ये भी जो है वो हस्बैंड के करने का काम तो है, लेकिन हस्बैंड की मदद की नीयत से बीवी भी जो है वो सर काम कर सकती है। तो ये नहीं कह रहा कि बाकायदा निकल करके आप जाएं या गाड़ी को लेकर के मैकेनिक शॉप पर जाएं, फिर वहां पे जाकर के उसकी ऑयल चेंज वगैरह करवाएं, उसकी रिपेयरिंग करवाएं, ये नहीं कह रहे। यहाँ पे खाली फाइल बनाने को कह रहे हैं। तो इस तरह के डेट्स वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए कि भाई कब का उसका ऑयल चेंज हुआ था। तो 3 महीने के बाद जो है वो ऑयल चेंज रिकमेंडेड होता है। तो अब डेट पता होगी तभी जो है वो 3 महीने के बाद फिर हस्बैंड साहब लेके जा सकेंगे ना उसको ऑयल चेंज करने के लिए। और उसी तरह से और भी मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स वगैरह भी होते हैं गाड़ी के कि भाई इसकी फलानी चीज खराब हो गई थी तो वो हमने फलानी तारीख में जो है वो नई डलवाई है, नए पार्ट्स डलवाए गाड़ी के अंदर। तो उसकी भी रिकॉर्ड जो होती हैं, रसीदें बतौर रिकॉर्ड के इस फाइल के अंदर रखी जा सकती हैं। फिर उसी तरह से रजिस्ट्रेशन कब करवाई थी, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगी तो वो इस तरह से रिकॉर्ड में रखना कि कब रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रही है वगैरह वगैरह। इसी तरह बिजली के बिल और वाटर बिल, बिजली का बिल आता है हमारे यहाँ, वाटर और गैस का बिल, ये 3 बिल जो होते हैं वो पाकिस्तान में कहा उसका घर के अंदर आ रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी मिडिल ईस्ट में भी इसी तरह के बिल होते हैं तो उनकी फाइल होनी चाहिए। अब तो बैंक जो अकाउंट होता है आपका ऑनलाइन उसको एक्सेस करते हैं और उसी के अंदर जो है वो अगर आप अपना बिलिंग का सिस्टम सेट कर दें तो फिर आपके जो यूटिलिटी डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनके सिस्टम से आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही बिल आ जाता है और फिर उसी के अंदर जो है ना वो आप अपने बैंक अकाउंट से जो है उसको पे कर देते हैं, खलास काम खत्म हो जाता है। तो अब फिजिकल बिल आने की भी जरूरत नहीं होती। हम अल्हम्दुलिल्लाह घर पाकिस्तान के अंदर रखा हुआ है तो यहाँ पे बैठ करके जो है ना वो पाकिस्तान के ही बैंक अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस कर लेते हैं। उसके अंदर जो है वो कराची इलेक्ट्रिक का भी बिल आ जाता है और जो है वो वाटर का भी बिल आ जाता है और जो है गैस का भी बिल आ जाता है, यहीं से बैठे बैठे जो है वो उसको पे कर देते हैं। लेकिन फिजिकल बिल अभी भी आते हैं वहां पर, तो वहां पर जो होते हैं तो वो फिर फिजिकल बिल को मेंटेन कर लेते हैं अपने पास। बहरहाल, तो बिजली के बिल और वाटर बिल की फाइल होनी चाहिए। जो मुख्तलिफ आलात की मुख्तलिफ वारंटीज हैं तो उनकी फाइल अलग होनी चाहिए। जब आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या घर किचन का जो है वो ब्लेंडर खरीदते हैं, कोई और इस किस्म का माइक्रोवेव ओवन वगैरह कुछ खरीदा तो उसके साथ जो है वो एक तो उसकी दो चीजें होती हैं सबसे अहम, एक तो उसकी रसीद होती है, ठीक है, और दूसरी जो है ना वो उसका यूजर मैनुअल होता है। और उसी तरह से अगर कोई गारंटी कार्ड वगैरह है तो वो भी खरीदने के बाद किसी चीज के साथ आता है। तो ऐसी जो अहम चीजें होती है ना जो जरा महंगी होती हैं जिनका के खराब हो जाने का अंदेशा होता है, उसके खराब उसको सर्विस के लिए ले जाना पड़ता है या सर्विस कॉल करनी पड़ती है, तो उसके लिए ये 3 चीजें जो है ना वो फाइल के अंदर रखनी चाहिए, जरूरी होती है मतलब इसके बाद, ठीक है, उसकी रसीद और उसका जो है वो यूजर मैनुअल और उसके गारंटी की जो भी कार्ड या बुक है उसको, ठीक है। तो ऐसी अहम जैसे फ्रिज है, आपका स्टव है, ओवन है, ठीक है, तो इनकी ये तीनों चीजें जो है वो अपने पास रखनी चाहिए। लेकिन कहाँ रखनी चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी, जब आपका कोई चीज खराब हो जाएगी तो फिर तो एक पैनिक मच जाती है ना घर के अंदर, तो उस वक्त जो है ना फिर आपने कहीं कोने कुदरे में अगर डाल दी होगी तो फिर वो नहीं मिलेगी उस दिन। तो इस वजह से इन सबको एक खास जगह के ऊपर ही फाइल करना चाहिए। उसके लिए फोल्डर बनाए और बेशक कोई बड़ा सा एनवलप बना लें, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो सारी चीजें डालती रहे और उसके ऊपर बाकायदा लेबल भी कर दें कि भाई ये अप्लायंसेस की रिसीट्स हैं या अप्लायंसेस के जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर उसके बाद जो बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फाइल अलग होनी चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट्स, ये बैंक के डॉक्यूमेंट में सबसे अहम चीज होती है। बैंक अकाउंट खोलते हुए जो उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए थे तो उनकी कॉपी भी इसी फाइल के अंदर होनी चाहिए। ये ऑफिस हर औरत को अपने घर के अंदर अरेंज इंतजाम करना चाहिए, ठीक है। गोया कि ये एक होम ऑफिस है जिसके अंदर जो है वो घर से रिलेटेड चीजें जो है वो उनके डॉक्यूमेंट्स औरत बकायदा मेंटेन करें, ठीक है। किसी को इसके बारे में कोई सवाल हो या कोई कॉमेंट हो तो आप चैट विंडो के ऊपर लिख करके शेयर कर सकती हैं हमारे साथ या सबके साथ, जैसे आप चाहें। अच्छा, अब अगला पेज, अगले पेज के ऊपर अगला उन्वान है खाने का इंतजाम। तो खाने के इंतजाम के बारे में फरमाते हैं कि अब अगली बात है खाने के मुताबिक, तो एक मेन्यू प्लानर बना लें। मेन्यू अंग्रेजी का लफ्ज है तो अंग्रेजों के हिसाब से पढ़ लेंगे तो शायद कुछ हो जाए अंग्रेज में, तो मेन्यू प्लानर कहते हैं। तो जिसमें आप हफ्ते का एक प्लान यानी प्रोग्राम बना करके लिख लें कि मैंने हफ्ते के दिन क्या करना है, ठीक है। तो इतवार को क्या करना है, सोमवार को क्या करना है, यानी मंडे को क्या करना है, संडे को क्या करना है, अपनी मसरूफियत को सामने रखकर इसको बनाएं। जिस दिन आपके दूसरे काम ज्यादा हैं तो उस दिन आप कुकिंग कम करें, और जिस दिन आप फारिग हैं तो उस दिन आप एक दो इजाफी डिशेस भी बना सकती हैं। फारिग से आपकी मुराद ये नहीं है कि कोई काम करने को नहीं, लेकिन फारिग से मुराद ये कि कोई एक्स्ट्रा काम नहीं आया वो आपके ऊपर, ठीक है। तो उस दिन को जो है वो कुकिंग कुकिंग के लिए जो है वो डेडिकेट कर सकती हैं, तो एक दो इजाफी डिशेस भी बना सकती हैं। इजाफी डिशेस का मतलब क्या हुआ कि फिर साहिब खाना को फ्रेश नहीं मिलेगी। ये फ्रेश का भी आजकल के भाई अब जमाना जो है ना वो इस लिहाज से बहुत सारी चीजों के लिहाज से जमाना बदल चुका है, तो ये भी पहले पुराने जमाने में फ्रिज नहीं होता था, पुराने जमाने में माइक्रोवेव नहीं होता था, तो फ्रेश चीजें बनती थी और रोजाना सब्जी आती थी, उसी को रोजाना ही काटा जाता था या कटवाया जाता था, और फिर जो है वो गोश्त भी जो है वो थोड़ा सा करके ही पकाया जाता था क्योंकि उसको स्टोर करने का कोई फ्रिज होता नहीं, ठीक है। अब कुछ लोग जो है ना वो फिर आज भी उसी अंदाज से ही चलना चाहते हैं कि भी रोजाना फ्रेश बनना चाहिए, रोजाना जो है वो नया गोश्त आए या नया जो है वो सब्जी कटे और फिर नया खाना पके, तो उनको ये कहना चाहिए कि आप जो है फिर घर से फ्रिज भी निकाल दें, घर से जो है माइक्रोवेव भी निकाल दें, और जो है ना फिर घर भी जो है फिर आपको मिट्टी का ही बना दें, ठीक है। और बाथरूम भी फिर अब आप जो है ना वो घर में नहीं जाया करें, बाथरूम भी जो है ना वो आप फिर दूर कहीं जाया करें जहाँ पे कोई आपको ना देखता हो, वहीं पे बाथरूम जाया करें, क्योंकि पुराने जमाने में बाथरूम भी घर में नहीं होता था, ठीक है। और गाड़ी के ऊपर दफ्तर भी आप नहीं जाया करें क्योंकि पुराने जमाने में गाड़ी भी नहीं होती थी, ठीक है। तो आप भी कोई घोड़ा छोड़ा रख लें, कोई ऊंट छूट रख लें, ठीक है, और उसके ऊपर जो है आप दफ्तर चले जाया करें, ठीक है। तो अब आपको जो है ना वो पुराने तरीके से लेकर के काम, ठीक है, इट वॉज द बेस्ट थिंग, ठीक है। उस जमाने में जाहिर है सेहत भी अच्छी होती थी ना, आप जो है वो गाड़ी पे बैठ करके दफ्तर नहीं जाते थे, घोड़े पे, तो घोड़े पे बैठ कर घुड़सवारी करने से सेहत बहुत अच्छी होती है, ठीक है। पैदल जाते थे लोग तो पैदल चलने से तो सेहत बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो सेहत की इतनी फिक्र है तो आप भी पैदल जाया करें, ठीक है ना, गाड़ी शाड़ी जो है वो रहने दें किसी और के लिए। तो सेहत की इतनी फिक्र है तो भाई आप भी सेहत की फिक्र करें ना। ये मतलब मैं आपको नहीं कह रहा कि आप घर में बहस शुरू कर लें, लेकिन एक सोच का अंदाज होता है ना, तो सोच का अंदाज तो फिर सेट होना चाहिए ना। अब वो आप उनसे बहस ना करें, लेकिन तमीज के दायरे में रहते हुए ये बात कम्युनिकेट की जा सकती है कि बस हमें ही सेहत का सारा ख्याल रखना है ना, कि जी रोजाना फ्रेश खाना बनाए, फ्रिज में उसको स्टोर नहीं करें, माइक्रोवेव में उसको गर्म नहीं करें, तो ये तो नहीं है ना, इस तरह से नहीं नहीं काम चलता है, पूरा निजाम बदल चुका है ना। तो अब निजाम के हिसाब से जितना आप कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं ना, आप निजाम से बाहर जाकर के काम नहीं कर सकते। निजाम को बदलने के लिए फिर मेहनत करें, वो आप करना नहीं चाहते हैं निजाम को बदलने के लिए, तो ऐसे नहीं काम चलता। तो उन्होंने फरमाया कि अपनी मसरूफियत को सामने रखकर उसको बनाएं, जिस दिन आपके दूसरे काम ज्यादा है उस दिन आप कुकिंग कम करें, और जिस दिन आप फारिग हैं उस दिन आप एक दो इजाफी डिशेज भी बना सकती हैं। लेकिन अगर पहले से प्रोग्राम बनाया हो तो ग्रॉसरी करना भी आसान होता है और वक्त पर पकाना भी आसान होता है, अक्सर औरतें सुबह उठती हैं तो उस वक्त सोचती हैं कि आज क्या बनाना है। उसमें टाइम भी जाया होता है और रिसोर्सेज भी सही इस्तेमाल नहीं होते। सबसे बड़ा रिसोर्स हर इंसान के पास क्या होता है? टाइम, वक्त। ठीक है, तो अगर पहले से प्लानिंग ना करी हुई हो तो वक्त जो है जाया होता है हर रोज एक नई प्लानिंग करने के लिए। आज मैं क्या पकाऊं, तो फिर वो मुश्किल होती है ना। अच्छा, कुछ मैसेजेस आए हुए उनको पढ़ लेते हैं कि घर पे कहते हैं कि बासी खाना खाने से बीमारी होती है, तो उनको तमीज के दायरे में या उनकी अम्मी के थ्रू उनको ये बात भी बताई जा सकती है कि गाड़ी चला के दफ्तर जाने से भी बीमारी होती है। वॉकिंग के इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि जिसका के हिसाब नहीं किया। बल्कि अभी तो इंशाल्लाह हम वॉकिंग के ऊपर एक बड़ा अच्छा सा एक छोटा सा आर्टिकल आया है, वो भी शेयर करने वाले हैं ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो गाड़ी शाड़ी को नहीं इस्तेमाल किया करें, बीमारियां होती हैं उससे। ठीक है, गाड़ी का धुआं भी होता है और उस बहुत सारी चीजें भाई। अच्छा, और चीजें और क्या लिखा आपने कि ये सब बातें किस तरह अपने घर की बहू भाभियों इवन बेटियों को समझाएं, जो इन सब बातों की दलील कुरान एंड सुन्नत से मांगना शुरू कर दें और किसी सूरत कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की विलिंग ना। कौन सी वाली बात की कुरान और सुन्नत से दलील चाहिए कि बासी खाना खा सकते हैं, इसकी कुरान और सुन्नत से दलील चाहिए? या मतलब अभी तो कोई ऐसी बात नहीं करी थी कुरान सुन्नत से दलील जिसकी जरूरत पड़े। हम तो बल्कि उनके फायदे की बात कर रहे हैं, आजकल की बहू भाभियों के फायदे की बात कर रहे हैं ना, कि उनको रोजाना नया फ्रेश खाना नहीं बनाना पड़ेगा। या तो आप उल्टी बात समझ रही हैं, राइट? हम समझा कुछ रहे हैं, आप समझ कुछ उल्टी बात रही हैं। ठीक है, तो तब आप कुरान सुन्नत की दलील की बात करेंगे ना, तो बात ही कर रहे हैं जिसमें कि वो और बेदलील मानने के लिए तैयार हो। बहरहाल मुझे नहीं समझ में आया कि आप क्या सवाल करना चाहते हैं। अच्छा, मेन्यू बनाते हुए उसमें वैरायटी, मुख्तलिफ अकसाम की चीजें होनी चाहिए। इंसान की आदत है कि रोज अगर एक ही चीज खाए तो तबीयत उबता आ जाती, इसलिए इसमें बच्चों को खाने की वैरायटी दें और ताकि वो रغبत के साथ खाएं। इसलिए इसमें बच्चों को खाने की वैरायटी दें ताकि वो रغبत के साथ खाएं, इंसान की आदत है। अच्छा, तो चलें, ये आपने लिख दिया डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजिंग एंड होम मैनेजमेंट। ठीक है, कि लड़की क्यों करे होम मैनेजमेंट, लड़की क्यों करे डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो इसमें जो है ना, फिर दो बातें। एक तो ये है कि हमने जो आपको दलील दी है, हम ऑलरेडी दलील दे चुके हैं, वो दलील जो है वो एक अखली दलील थी। ठीक है, अखली दलील क्या थी कि लड़की को होम मैनेजमेंट करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजिंग करनी चाहिए, तो इसकी हमने एक अखली दलील दी थी। ठीक है, जो कि आजकल वैसे भी असली दलील जो है वो जरा ज्यादा लोगों को समझ में आती है। वो क्या असली दलील दी थी हमने? तो नहीं है, आप खुद ही बता दें या कोई और स्टूडेंट बता दें कि घर के अंदर जो औरत होती है उसको होम मैनेजमेंट करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजिंग करनी चाहिए और इसको अपने लिए कोई रुसवाई का सबब नहीं समझना चाहिए। तो इसकी असली दलील क्या थी, क्या दी थी भी? एक बात तो यही है ना कि इसकी एक अकली दलील है, तो क्या अकली दलील है? उसको करना चाहिए वाला काम, अब क्यों करना चाहिए? खिदमत का जज्बा, ये कोई अकली दलील नहीं है। खिदमत, ये भी कोई अकली दलील नहीं है। एक लफ्ज से तो वो कहेंगे आपको उल्टा मारना शुरू हो जाएंगे कि मैं ही खिदमत करूंगी, दुनियावी एतबार से फसाद ना हो, ये भी कोई अकली दलील नहीं है। ये भी कोई अच्छा, आपकी तीनों जवाब है ना, ये बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि ये तो दलील में आते ही नहीं है ना। अकली दलील की बात कर रहे हैं, क्या अकली दलील दी थी?
उस दलील से साबित करें कि औरत को घर में खिदमत करनी चाहिए। क्या आखिरी दलील दी थी? ऑर्गेनाइज होने से वक्त पर मिल जाएगा सामान। नहीं, बैलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। माशाल्लाह, आपने खुद ही अपना जवाब खुद ही दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बिकॉज द हस्बैंड ऑल्सो हेल्प्स हर बाय गोइंग टू वर्क एंड प्रोवाइडिंग फॉर हर। ही कुड ऑल्सो इजिली से दैट ही विल ओनली प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ। एग्जैक्टली राइट, ये है अकली दलील। ठीक है, बैलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसको कहा जा सकता है कि भाई वो भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा है ना, वो भी तो ये कह सकता है ना कि मैं क्यों करूं तुम्हारे लिए। जिस तरह अमेरिका यूरोप के अंदर यही होता है ना, मैं अपना कमा रहा हूं अपना, मतलब हर घर में, वहां पे भी ऐसा नहीं होता, वहां पे भी बहुत सारे घराने जो बच गए हैं, अब अभी तक बचे हुए हैं, तो वहां पर भी मर्द ही कमा के लेकर के आता है और बीवी बच्चे उसको खा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन तकरीबन बाकी सारा मुआशरा उनका खत्म हो चुका है, तो अब मर्द अपना कमाता है, बीवी औरत अपना कमाती है, और अपना अपना सिलसिला चल रहा होता है। ठीक है, तो ये है अकली दलील। ठीक है, तो इसका कुरान और सुन्नत से दलील देने की इसमें कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो कुरान और सुन्नत तो वैसे भी उनको समझ में नहीं आएगी ना बात, आपकी बहुएं और कुरान और सुन्नत में कहां से ये चीज आपको। ठीक है, तो अभी तो अकली दलील की बात करें, बाकी कुरान और सुन्नत की दलीलें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन इसका कोई खास उनके ऊपर फायदा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो घर के काम करने की जो दलीलें हम तलाश कर रहे हैं ना, ये तो सारी की सारी डिस्कशन जो है वो अच्छी खासी जो है वो बेकार साबित होती है, क्योंकि जब आप बहू लेकर के आ रही होती है ना, या जब आपने बेटे की तरबियत करी होती है कि वो अपनी पसंद की शादी करे, ठीक है, तो उस वक्त तो फिर वो अगर किसी ऐसी लड़की को शादी करके लेकर आ रहा है घर के अंदर के, जिसका कि दिमाग ही जो है वो बेखिदमत वाला बना हुआ है या बेदलील किस्म का दिमाग बना हुआ है, तो फिर वो तो नहीं खिदमत करेगी ना। तो भाई ये तो पहले करने का काम था ना, या तो बेटा इतना अच्छा था कि वो आपकी मर्जी की बीवी लेकर के आए, तो फिर आपको जो है वो बीवी तलाश करते हुए ये चीजें देखनी चाहिए थी ना अपने बेटे के लिए। लेकिन आपने तो अगर देखा कि मेरी बहू जो है ना वो ऐसी खूबसूरत होनी चाहिए, तो भाई खूबसूरत तो आ गई। अब खिदमत और खूबसूरती, ये तो जरूरी तो नहीं है कि एक शख्स के अंदर जमा भी हो, कि खूबसूरत भी हो और खिदमत भी करती हो। खा के अलावा इन दोनों में कोई और कॉमन चीज तो नहीं है। ठीक है, खूबसूरती और खिदमत में खा के अलावा और कौन सी कॉमनैलिटी है? ठीक है, तो खूबसूरत बहू आ गई, खिदमत तो फिर एक अलग चीज होती है ना। उसी तरीके से डिग्रियां देख करके ले आई कि वो जो है वो उसने ये डिग्री ली हुई है, और उसने वो जो है वो करियर अपना बनाया हुआ है, और तो फिर खिदमत तो एक अलग चीज होती है ना, वो डिग्रियों से तो नहीं आती वो खिदमत। ठीक है, तो भाई बहू लाते हुए ये चीजें देखनी थी। अच्छा, उसके ऊपर कहेंगे मैं बहू असल में ना वो बेटा अपनी मर्जी से लेकर के आया, मेरी तो बात ही नहीं सुनी उसने, तो उसके ऊपर ये समझाया जाएगा कि भाई आपने बेटे की ऐसी तरबियत क्यों करी कि वो अपनी मर्जी से इस किस्म की बेखिदमत किस्म की बहू बीवी लेकर के आया। ठीक है, अब ये तो इट्स ऑलरेडी डन ना, तो अब जो है वो आप बस अल्लाह ताला से माफी मांग सकती हैं, मदद की दरख्वास्त करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह इस बहू के साथ जो है ना मेरी आप मदद फरमा दीजिए, मैं अपनी गलतियों पर नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसी सिवियर किस्म की ब्लंडर्स कर लिए हैं। अब मैं तो जमाने को वापस नहीं कर सकती, लेकिन आपके लिए तो बहुत आसान है कि आप मेरी बहू का दिल बदल दें और उसको भी जो है वो खिदमत के ऊपर माइल कर दें। ठीक है, तो अल्लाह ताला से माफी मांगना और अल्लाह ताला से मदद मांगना, इसके अलावा आप दलीलें देकर के जो है ना वो आप बहू को काम पे नहीं खड़ा कर सकते। ये बात आप जान लें अच्छी तरीके से, बहू को दलीलें देकर के आप काम पे खड़ा नहीं कर सकती, चाहे वो पुरानी दलील हो चाहे वो अकली दलील। ये तो दलीलें आपके अपने लिए, जो हम क्लास में बातें कर रहे हैं ना, ये उन लोगों के लिए जो क्लास सुन रहे हैं। बहू अगर सुन रही है तो फिर बहू के लिए भी है, लेकिन बहू तो सुन नहीं रही, तो फिर उनके लिए तो ये दलीलें नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए तो फिर दूसरे
ذہن سازی اور تربیت اور ان سب چیزیں. تو بہرحال مینیو بناتے ہوئے اس میں ورائٹی ہونی چاہیے. انسان کی عادت ہے, یعنی انسان کی فطرت ہے, عادت سے یہاں پہ مراد ہے, وہ انسان کی فطرت ہے کہ روز اگر ایک ہی چیز کھائے نا تو طبیعت پختہ آ جاتی ہے. بنی اسرائیل والوں کو تو من و سلوہ ملتا تھا, جنت سے ان کے لیے کھانے اوپر سے آتے تھے, من بھی ہوتا تھا اس کے اندر, سلوہ بھی ہوتا تھا اس کے اندر, لیکن اکتا گئی. ہمیں نہیں چاہیے روز روز ہمیں ایک ہی چیز کھانی پڑتی ہے, ہمیں تو جو ہے نا وہ ککڑیاں چاہیے اور پیاز چاہیے اور لہسن چاہیے اور یہ چاہیے وہ چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک دوسرا کانٹیکسٹ تھا جس کے اندر ان کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. خیر, تو انسان کی عادت ہے, یہ انسان کی فطرت ہے کہ روز اگر ایک ہی چیز کھائے تو طبیعت اکتا جاتی ہے, اس لیے اس میں بچوں کو کھانے کی ورائٹی دیں تاکہ وہ رغبت کے ساتھ کھائیں. اچھا, اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے جو آپ نے پکایا ہے اس کو کھانے کے اوپر زیادہ نخرے کریں نا, تو اس کو جو ہے وہ آپ لائٹلی نہ لیں. کوئی بات نہیں, وہ یہ نہیں کھاتا تو کوئی بات نہیں, بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کی آپ نے ایسی تربیت کرنی ہے, ایسا اس کا مزاج بنانا ہے کہ جو گھر میں پکا ہے وہ اس کو کھائے. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے آپ کو اگر سختی بھی کرنی پڑے تو سختی کر لیں. ٹھیک ہے, مار پیٹ کرنا ایکدم سے نہیں شروع ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, مار پیٹ کرنے کو نہیں کہہ رہے, سختی کرنے کو کہہ رہے. سختی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں, جو گھر میں پکا ہے یہ آپ نے کھانا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم آپ کے لیے کوئی الگ سے چیز نہیں بنائیں گے. یہ کیا کہ بھئی جو پک رہا ہے وہ آپ نہیں کھا رہے. اس طریقے سے ماں باپ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, بلکہ مائیں, کیونکہ یہ والا کام جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر مائیں کر رہی ہوتی ہیں کہ جی بیٹی جو ہے نا وہ پیاز نہیں کھاتی, بیٹی جو ہے وہ فلانی چیز نہیں کھاتی, تو ہم اس کے لیے کچھ اور بنا دیں گے. وہ اس طریقے سے اس کی یہ عادتیں جو ہیں وہ پکی ہو جاتی ہیں, راسخ ہو جاتی ہیں, اور وہ بڑی ہو جاتی ہے یا بڑا ہو جاتا ہے لیکن وہ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا. ٹھیک ہے, اور اس سے کیا جو ہے نا, خالی یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ دوسرے گھر میں جائے گی تو وہاں پر اس کو اس کے ناز اٹھانے کے لیے اماں نہیں ہوں گی تو پھر جو ہے وہ مسئلہ ہو جائے گا. نہیں, خالی یہ مسئلہ نہیں ہے. یا یہ بیٹا جو ہے وہ اب اس کی بیوی آئے گی, ہے نا, بیٹا جو ہے وہ دوسرے گھر میں نہیں بھی جاتا اگر, تو بیوی تو دوسرے گھر سے آتی ہے نا, تو اب بیوی کو جو ہے وہ اس کی جان اذیت میں, آپ کے بیٹے صاحب اس کی جان اذیت میں ڈالیں گے کہ جی میں تو یہ نہیں کھاتا, میں تو وہ نہیں کھاتا, مجھے تو ایسی چیز چاہیے, مجھے تو ویسی چیز چاہیے. یعنی کوئی لاڈ لاڈ اور لاڈ صاحب آئے ہوئے, ٹھیک ہے, کوئی جو ہے وہ نخرے کے کوئی پرنس آئے ہوئے, تو اب وہ دوسرے انسان کی زندگی اذیت میں ڈالے گا, مصیبت میں ڈالے گا, یعنی بیوی کی زندگی. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اما نے ایسی عادت بنا دی ان کی, لڈو اور پپو اور لاڈلے اور پتہ نہیں کون تھے ان کے. ٹھیک ہے, تو پپو صاحب کی جو ہے وہ عادت بن گئی ہے. اب بیوی جو ہے نا پھر یا تو آپ سے لڑائیاں کرے گی, اگر دنیا دار ہوگی تو وہ آپ سے لڑائیاں کرے گی, اور اگر دیندار ہوگی تو آپ کو بدعائیں دے گی پھر. ٹھیک ہے نا, اور وہ بدعا جو ہے نا پھر اس کے دل سے نکلے گی, اور دل سے جو نکلتی ہے نا وہ خاص طور پر مظلوم کی, آپ کو پتا ہے کہ وہ رد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کی بدتربیتی کی وجہ سے اس کی زندگی کو عذاب بنا رہا ہے, تو اس کے دل سے آپ کے لیے بددعا نکلے گی, اور اللہ تعالیٰ پھر اس بددعا کو قبول بھی کر لیں گے, اور پھر آپ کے ساتھ تماشا ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے, تو بیٹے کا دماغ خراب نہ کریں, نہ بیٹی کا دماغ خراب کریں. کہ کوئی بات نہیں بیٹا, اگر آپ یہ نہیں کھاتی تو ہم آپ کے لیے روزانہ کچھ نئی چیز بنائیں گے, کوئی الگ چیز بنائیں گے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا بلنڈر ہے جو بڑے بڑے دنیا دار تو کیا دیندار بھی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتیں, اور کیا اس کے اوپر دلیل کیا دیتے ہیں کہ ابھی بس بڑی ہو کے ٹھیک ہو جائے گی. رائٹ, بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا, تو اس کے اوپر ہمارے حضرت جو ہے نا وہ ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بھائی جو دیوار ٹیڑھی کھڑی ہو رہی ہے تو وہ تو جب کچھ عرصے کے بعد اس کو آپ اونچا کریں گے تو وہ ٹیڑھی اور اس کا ٹیڑھپن بڑھ جائے گا نا. رائٹ, اگر وہ ٹیڑھی کھڑی ہو رہی ہے یا کوئی درخت ہے وہ ٹیڑھا کھڑا ہو رہا ہے تو وہ کچھ عرصے کے بعد جا کے خود بخود سیدھا کیسے ہو جائے گا, وہ تو ٹیڑھا ہی کھڑا ہوگا نا, اور اس کا ٹیڑھپن مزید بڑھے گا, اینگل اس کا مزید بڑھے گا, ٹیڑھا والا اینگل. ٹھیک ہے,
तो इस वजह से छोटी उम्र के अंदर जो है ना वो इन बुरी बातों की इसलाह हो जाए तो वो आसान होता है मामला, और बड़े होने के बाद मुमकिन नहीं होता इसलाह करना। ठीक है, इसी वजह से जो देर की उम्र में शादी करने का रिवाज जहां पर है ना, तो वहां पे एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि जो देर से शादी होती है ना, तो बंदा अपनी आदतों में अपनी फितरतों में बिल्कुल पक्का हो जाता है। ठीक है, अब उसके लिए एडाप्ट करना मुश्किल तरीन हो जाता है, बल्कि नामुमकिन भी हो जाता है कि वो अगले बंदे के साथ जो उसने शादीशुदा जिंदगी गुजारनी है, तो भाई वहां पर तो बीवी को भी अडाप्ट करना पड़ता है, शौहर को भी अडाप्ट करना पड़ता है। ठीक है, खाली एक साइड पे नहीं, दोनों को अडाप्ट करना पड़ता है, तब जाकर के अच्छी जो है वो खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजरती है। लेकिन इन ये तो ऐसे पक्के हो गए अपनी आदतों के अंदर, क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई है, तो अब तो ये अडाप्ट ही नहीं कर सकते, तो फिर बहुत बहुत मुसीबत हो जाती है ऐसे घर के अंदर ना। इसी वजह से जल्दी शादी करना है मुझे, हमारे दीन के अंदर इसकी भी जो है वो अच्छी खासी तालीम मौजूद है अमली तौर पर। एक चीज दो टाइम नहीं खाया जाता हजरत, आपसे नहीं खाया जाता या आपके घर के लाडलों से नहीं खाया जाता। ठीक है, तो जिन लाडलों से नहीं खाया जाता ना, तो उन लाडलों की फिर जरा इसलाह की जरूरत है। ठीक है, तो दो टाइम तो क्या, तीन टाइम खिलाए उनको एक ही चीज। ठीक है, अब शौहर साहब जो है वो, आप उनकी अम्मा के लिए दुआएं करें, अल्लाह उनकी मगफरत फरमा दें। अगर उनकी शौहर साहब की मिजाज जो है वो उनकी अम्मा ने यानी आपकी सास ने बना दिया है ऐसा मिजाज, अब शौहर के साथ तो सर फोड़ने से आपका ही सर फूटेगा और घर का मिजाज माहौल खराब होगा, बच्चों की तरबियत जो है वो और ज्यादा खराब होगी। ठीक है, तो इस वजह से शौहर से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला आसानी फरमा दे। ठीक है, लेकिन आगे तो ये काम ना करें ना, अपने बेटों की तो कम से कम ऐसा मिजाज ना बनाए ना। ठीक है, यहाँ पे हम आपको अपने बेटियों के आपके बेटों के लिए ये नसीहत कर रहे हैं, आपकी बेटियों के लिए नसीहत कर रहे हैं, शौहर की इसलाह नहीं कर सकती बीवी, वो तो अम्मा साहबा कर चुकी जो करना था। जब कुकिंग लिस्ट बनाए तो अपने इन लॉज से मशवरा जरूर मांगे। ठीक है, ससुरालियों से, ससुराली जो होते हैं ना ये इसराइलियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं आपको पता है, तो उनसे जो है वो मशवरा कर दिया करें। अगर आप किचन की जिम्मेदार हैं तो भी आपकी सास ये चाहेगी कि किचन के बारे में मुझसे जरूर पूछा जाए, इसलिए इस पॉइंट को ना भूलें कि ससुराल का कर
आर
लेना चाहिए।
वाइट
ठीक है,
फोर फेयर
मशवरे में खैर होती है, तो अगला बंदा भी थोड़ा सा फील करता है कि हाँ भी मुझे इन्होंने इज्जत दी, मुझे इन्होंने, तो इस वजह से ना मशवरा तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाते हैं वशाविरहुम फिल अमर। तो नबी अलैहिस्सलाम किससे मशवरा करने का हुक्म दिया गया, अपने बड़ों से मशवरा करने का, नबी अलैहिस्सलाम से तो कोई बड़ा है ही नहीं, तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने छोटों से मशवरा कर लिया कर। ठीक है, तो इसमें बहुत फायदा होगा, तो भाई जब छोटों से मशवरा करना ये फायदा मंद होता है, तो बड़ों से मशवरा करना तो बहुत ज्यादा फायदा मंद है। ठीक है, बहरहाल इसके ऊपर लंबी बात की जा सकती है, लेकिन टाइम क्लास का ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इस वजह से बस ये हमने पैराग्राफ मुकम्मल करना है, तो बस इसके ऊपर बाद में कभी बात होगी। कहते हैं कि घर में सब्जियों सलाद और फ्रूट वगैरह का स्टॉक कर सकती हैं, तो ये एक अच्छी आदत है। ठीक है, यानी सब्जियों का खेत लगाने घर के अंदर, हजरत जी दाम बरकाते हूँ जो जंग में पैदा हुए, जो कि एक छोटा शहर है पाकिस्तान का जिसके चारों तरफ खेत ही खेत है। ठीक है ना, जंग में हमारे हजरत की ये बयान पढ़ रहे हैं, वो जंग में पैदा हुए और जंग के, बेशक छोटा सा एक शहर है वो, लेकिन उसके चारों तरफ खेत ही खेत। वो क्या मशवरा दे रहे हैं कि सब्जियों सलाद और फ्रूट वगैरह का स्टॉक कर लें। ये नहीं कह रहे कि रोजाना खेत से जाकर के काट के ले आया करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो खेत होते हैं। ठीक है, तो स्टॉक करने के, तो स्टॉक किधर करेंगे, फ्रिज के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को जो कि हजरत जी तो बड़ा करते हैं, लेकिन रोजाना फ्रेश सब्जी आज के जमाने में भी बात करते हैं ना, काम नहीं करना होता ना, इसी वजह से कि काम करना होता है। तो ये एक अच्छी आदत है कि स्टॉक कर लिया करें। हफ्ते के मील प्लान, खाने का शेड्यूल स्केड्यूल को फ्रिज के दरवाजे पर लगा दें। फ्रिज के ऊपर मैग्नेट्स मिलते हैं, अब तो हर जगह ही मिलते हैं, तो मैग्नेट्स के जरिए से इस तरह के कागज वगैरह को फ्रिज के ऊपर चिपकाया जा सकता है।
इससे आपको ग्रोसरी की शॉपिंग का अंदाजा भी होगा और डी फ्रॉस्ट गैर मुंजमद कौन कौन सी चीजें चीज करनी है, किस चीज को डी फ्रॉस्ट करना है, तो इसका भी आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे चिकन जो है वो खरीद के लेकर के आई तो 10 चिकन जो है ना वो फ्रीजर में डाल दी थी, ठीक है, तो अब जो है वो जिस दिन आपको चिकन पकानी है तो हमारे घर वाले क्या करते हैं, वो सुबह को फजर के वक्त जो है वो उसको निकाल करके बाहर रख देते हैं, और माशाल्लाह यहाँ गर्मी इतनी होती है कि वो अच्छे से डिफ्रॉस्ट हो जाती है, तो उसके बाद जब उसको पकाना होता है तो फिर आसानी हो जाती है उसको, बस पतीली में डाला और मसाला वसाला जो भी है करना हो जाता है। तो पहले से अगर प्लानिंग होगी तो फिर डिफ्रॉस्ट कौन सी चीज करनी है इसका भी आपको अंदाजा हो जाएगा। जब कोई चीज सेल पर हो उस वक्त उस चीज को ज्यादा खरीद कर महफूज कर लें, आम हालात में चीज ज्यादा नहीं खरीदनी चाहिए, यानी नॉन सेल आइटम जो है वो ज्यादा ना खरीदें, सेल आइटम खरीदें जो सेल के ऊपर आए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे घरों की ये आदतें होती हैं, और जो जहाँ पे शुक्र वुकर का कोई मिजाज नहीं होता तो वहां पर तो बस आराम का माल समझ करके शोर का लुटाया जा रहा होता है, जो भी हो जो भी प्राइस हो बस जो है वो आओ देखा ना ताओ जो है वो खर्च किया जा रहा होता है। इससे जो है फिर बेबरकती भी होती है और लड़ाई झगड़ा भी होता है, और है ना। तो भाई सेल पेपर्स इवन जब आप जो है वो किसी स्टोर में, इवन अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, तो सऊदी अरब में भी रहते हैं, यहाँ पर भी सेल पेपर्स जो होते हैं वो हाइपर पांडा वगैरह के एंट्रेंस के ऊपर वो सेल पेपर्स रखे हुए होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है कि आज जो है ना वो हमारे यहाँ ये आइटम्स जो है वो सेल पर है, तो उन आइटम्स को जाकर के खरीदें जो सेल पर आए हुए। हत्ता कि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर भी इन्होंने सेल्स वगैरह आई हुई होती हैं, तो उनके अंदर भी उन आइटम्स को खरीदें और ज्यादा खरीदें जो कि सेल पर आई हुई, ठीक है, और जो नॉन सेल आइटम्स होती हैं अच्छा खासा फर्क होता है। ये सेल का कॉन्सेप्ट कल ही शायद बच्चों में बात हो रही थी कि पाकिस्तान में तो शायद सेल वेल पता नहीं होती भी है कि, अब पहले तो नहीं होती थी पाकिस्तान में, तो खाली प्राइस बढ़ती है, रमजान आता है तो सेल नहीं होती बल्कि रमजान आता है तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, बाकी दुनिया में काफिर भी रमजान की सेल कर लेते हैं, भी मुसलमान जो है ना वो ज्यादा खरीदेंगे रमजान में, उनको जरूरत पड़ती है तो हम आइटम्स की जो है वो सेल पे लेकर के आए, हमारे यहाँ तो बताया दूसरे किस्म की सोच होती है, तो सेल के ऊपर जो है वो चीजें ज्यादा खरीद लेनी चाहिए, इतनी भी ज्यादा नहीं कि वो फिर अब जाया होनी शुरू हो जाए और सड़ करके खराब हो जाए, इतनी ज्यादा नहीं, बल्कि मुराद ये है कि अगर एक खरीदती है तो दो खरीदें, दो खरीदती है तो तीन खरीदें, इस तरह से, ठीक है जी। और कोई अगर सवाल या कमेंट हो आपके पास तो पूछ लीजिएगा। हाँ तो भाई कन्वाद रह गए, जिसको भी पढ़ने थे तो उम्मीद है कि वो अभी क्लास में मौजूद हैं, तो बस नियत कर लें कि जो भी गलतियां कोताहियां हमसे हो गई, चाहे वो अपनी तरबियत में गलतियां कोताहियां हो गई, चाहे अपनी औलाद की तरबियत में गलतियां कोताहियां हो गई, या हुकूक-उल्लाह में जो है वो कोताहियां हुई, या इन जनरल हुकूक-उल-इबाद में हमसे कोताहियां हो गई, हम उन सब के ऊपर नादिम हैं, शर्मिंदा हैं ए अल्लाह, और हम आपसे उसके ऊपर माफी मांगते हैं, और हम दिल के अंदर ये इरादा करते हैं कि हम आइंदा ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है, इरादा हमारा करने का काम है, बाकी उसको आसान बना देना हमारे लिए ये आपका काम है, ये आप ही कर सकते हैं, हम ये काम कर ही नहीं सकते, हम तो खाली इरादा कर सकते हैं, तो हमने इरादा कर लिया, ठीक है। तो दिल की इस कैफियत के साथ इन तौबा के कलमात को पीछे पीछे दोहरा लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसि बादल मौत, आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बेअस्माइही वसिफातिही वकबिलतु जमीअ अहकामिही इकरारुम बिल्लिसानी वतस्दीकुम बिल्कल्ब, इकरारुम बिल्लिसानी वतस्दीकुम बिल्कल्ब, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. یہی توبہ کلمات ہوتے ہیں، ان میں آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہ آپ نے دہرایا، ساتھ اس کے پیچھے پیچھے استغفار پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی اپیل کری. یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ہمارے مشائخ انہوں نے بس ایک طرح سے اس کو کمپائل کر کے توبہ کلمات کا نام دیا ہے. دل کی نیت کے اوپر اصل دار و مدار ہوتا ہے، جس کی نیت توبہ کرنے کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو یقیناً قبول کر لیا، اور جس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اپنے محبوبوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور پھر محبوب کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ خصوصی معاملہ بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، نیکی کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں اور اس کی وجہ سے جو پریشانیاں تھیں مشکلات دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ سچی توبہ کے ساتھ لگی ہوئی چند بینیفٹس ہیں جو کہ اس دنیا میں ہی انسان کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لیں اور ہمیں آئندہ باقی ماندہ زندگی میں اپنے پسندیدہ بندے بندیوں میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.